ಗೋಪಿ ಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರಧಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಜನರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಯಮುನಾ ತೀರ ವನಚಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare. Vrindavan Bihari Radha, Vrindavan Bihari Radhe. Jaya Radha, Madan Mohan Radha, Madan Mohan Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Prabhupad, 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 Jaya, Jaya, Gurudev, 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 Jaya. Jai Om Vishnupat Paramam Saparivajakacharya Stotra Sat Srimat is Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Iskon Sanstapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Ridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shama Kundu Radha Kundu Giri Govardhan Ki Jai Rajabhumi Vrindavan Dham ki jai, Mathura Dwarka Dham ki jai, Mayapur Navdeep Dham ki jai, Purushottam Kshetra Jagannath Puri Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Yamuna Mai ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Bhagavad Dharma ki jai, Harinam Sankirtan ki jai, Hare Krishna Mahamantra ki jai, Ananta Koti Vaishnav Vrind ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam. Naram Chaiva Narottamam. ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇ ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತೇ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೇ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಸ್ತಿಕೀ. ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶ್ಲೋಕ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತೋ ಸಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ವಿಶೇಷ ಕರ್ ರಾಮನವಮಿ ಕೆ ಮಹೋತ್ಸವ ಮೇ ಹೇ ದೈನಿಕ ಹಮಾರಾ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋತಾ ಹೈ. ತಮ್ ವಿಶೇಷ ಕರ್ ಕರ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತೇ ಜೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಬಹುತ್ ಹಿ ಅಲಗ್ ಅಲಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ ಸೆ ಆಯೇ ಹೈ. ಕಲ್ ಕೆ ಜೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥಾ, ಕೋಯ್ ನಾಂದೇಡ್ ಸೆ ಆಯೇ ಹೈ, ಕೋಯ್ ಶೋಲಾಪುರ್ ಸೆ ಆಯೇ ಹೈ. ತೋ ಸಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ. ಔರ್ ವೈಸೆ ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಹಮಾರೇ ಬಹುತ್ ಹಿ ಏಕ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ ಸೀನಿಯರ್, ಕಹಿ ಸಾಲೋನ್ ಸೆ ಭಕ್ತಿ ಕರ್ ರಹೇ ಹೈ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಮುಖ ಸೆ ಸುನ್ನಾ ಹಿ ಬಹುತ್ ಅನುಕೂಲ ಥಾ. ಹಾಂ, ಉನ್ಕೋ ಹಿ ಕಥಾ ಆಗೇ ಬಡಾನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಕಿಸಿ ಕಾರಣ ಉನ್ಕೋ ಜಾನಾ ಪಡಾ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಆಜ್ ಹಮ್ ಫಿರ್ ಭಿ ಆಜ್ ಕಾ ದಿನ ದುಪಹರ್ ತಕ್ ಹಮಾರಾ ಉಪವಾಸ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಬಾಹರ್ ಜಾಕರ್ ಕರೇಗೇ ಕ್ಯಾ, ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಥಾ ಹಾಂ ಚಾಲೂ ರಹೇಗಾ. ಆಪ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಭಿ ಬತಾ ದೇತೆ ಹೈ ಕಿ ಹಾಂ 11 ಬಜೆ ಐಸೆ ಏಕ ಮಹಾನ್ ಔರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೆ ಹಮಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಕೆ ಬಹುತ್ ಏಕ ಮಹಾನ್ ಸಂತ ಹಾಂ ವೋ ಭಿ ಯಹಾಂ ಪೆ ಹಮಾರಾ ಬಹುತ್ ಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ವೋ ಭಿ ಕಥಾ ಹೋಗಾ, ವೋ ಮರಾಠಿ ಮೇ ಹೋಗಾ ಔರ್ ಯೇ ಕಥಾ ಹಿಂದಿ ಮೇ ಹೋಗಾ. ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಭು ಹಿಂದಿ. ಎನಿವೇ, ಸೊ ರಾಮನವಮಿ ಕಾ ಉತ್ಸವ ಹೈ ಔರ್ ಹಮನೆ ಸಬ್ ಸುನಾ ಹೈ ಕಿ ರಾಧಾ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಪ್ರಭು ಉನ್ಹೊನ್ನೆ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಕಿಸ್ ತರಹ ಸೆ ಕಥಾ ಕಹಾಂ ಸೆ ಸುನ್ನಾ ಚಾಹಿಯೇ. ತತ್ವದರ್ಶಿ ಯಾನಿ ಜೋ ಹೃದಯ ಸೆ ಜೋ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಸಿರ್ಫ ಜ್ಞಾನ ಹೀ ನಹೀ ಲೇಕಿನ್ ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೇಮ ಹೈ. ಔರ್ ಯೇ ಕಥಾ ಐಸಿ ಹೈ ಕಿ ಜಬ್ ಹಮ್ ಐಸೆ ಲೋಗೋ ಕೆ ಮುಖ ಸೆ ಸುನ್ತೆ ಹೈ ತೋ ಇತನಾ ರೋಮಾಂಚಕ ಹೋತಾ ಹೈ. ಹಮಾರಿ ಬಾತ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಸ್ವಯಂ ರೋಮಾಂಚಕ ಹೋತೆ. ಆಪ್ನೆ ಸುನಾ ಉನ್ಸೆ, ಭಗವಾನ್ ಅಪ್ನೇ ಬಾರೆ ಮೇ ಕಥಾ ಸುನ್ಕರ್ ವೋ ಇತನೆ ಮಗ್ನ ಹೋ ಗಯೆ ಕಿ ವೋ ಭೂಲ್ ಗಯೆ, ವೋ ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಆಕರ್ ಸುನ್ನೆ ಲಗೆ ಔರ್ ಉನ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ. ತೋ ಯೇ ಕಥಾ ಕಾ ಏಕ ಬಹುತ್ ಬಡಾ ಏಕ ಗುಣ ಹೈ. ಹಾಂ, ಯೇ ದುರ್ಭಾಗ್ಯ ಹೈ ಕಿ ಆಜ್ ಕೆ ದಿನ, ಆಜ್ ಕಲ್ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ತೋ ಸಬ್ ಹಾಂ ದೇಹಾಂತೋ ಸೆ ಆಯೇ ಹೈ, ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಕುಛ 50-60 ಸಾಲ ಪಹಲೆ ಭಿ ಆಜ್ ಹೋತಾ ಹೈ ಕಿ ನಹೀ ಮೇ ಮಾಲೂಮ್, ಕ್ಯೋಂಕಿ ವಹಾಂ ಪೆ ಔರ್ ಏಕ ಗುರು ಆಕೆ ಬೈಠ ಗಯೆ ವಹಾಂ. ಪಹಲೆ ಶಾಮ್ ಕೆ ವಕ್ತ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತ ಹರ್ ದಿನ ಶಾಮ್ ಕೋ ಹೋತಾ ಥಾ. ದೂಸರೆ ಗುರು ಆಯೇ ಕೌನ್ ಹೈ, ವೋ ದೂಸರೆ ಗುರು ಆಕೆ ಘರ್ ಮೇ ಬೈಠ ಗಯೆ. ಗುರು ಕೋಣ ಘರಿ ಯೂನ್ ಬಸ್ಲೇ ತಾ ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲ ಸವೇ ಕಥಾಲ ಕೋಣಲ್ಲ ಆತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ನಾ ಹೈ. ಟಿ ವಿ ಆಯ, ಟಿ ವಿ ಪೂರಿ ತರ ಸೆ ಮಗ್ನ ಕರಾ ದೇತೆ ಹೈ. ತೋ ಯೇ ಲೇಕಿನ್ ಕಥಾ ಐಸೆ ಹೈ ಕಿ ಸುನ್ನೆ ಸೆ ಚೇತನಾ ಶುದ್ಧ ಹೋತಾ ಹೈ, ಭಗವಾನ್ ಕೆ ಲಿಯೇ ಆಕರ್ಷಣ ಬಢತಾ ಹೈ, ಪ್ರೇಮ ಬಢತಾ ಹೈ. ಯಹಿ ಜೀವನ್ ಕಾ ಯಹಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಹೈ. ಜೋ ಕುಛ ಹಮ ದೂಸರೆ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತೆ ಕಿಸಿ ಕಾಮ ಕಾ ನಹೀ ಹೈ, ಜಬ್ ಹಮೇ ಜರುರತ್ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ತೋ ಹಮ ಸಬ್ ಭಾಗ್ಯವಾನ್ ಹೈ. ಹಾಂ, ಕುಛ ಸಮಯ ಕೆ ಲಿಯೇ ಹಮ ಸಾಥ್ ಹೈ ಔರ್ ರಾಮ ಕಥಾ ಕರೇಗೆ. ತೋ ಯೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಸೆ ಹೋಗಾ. ಈ ನವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಾ ಶೀರ್ಷಕ ಹೈ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕಾ ವಿಶ್ವ ಪರ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನ. ಪುರುಷ ರಾಮಚರಿತಂ ಶ್ರವಣೇ ಉಪದಾರಯನ್ ಆಂಧ್ರ ಸಂಶಯ ಆಂಧ್ರ ಸಂಶಯಪರ ರಾಜನ್ ಕರ್ಮ ಬಂದೇ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷೋ ರಾಮಚರಿತಂ ಶ್ರವಣೇರುಪದಾರಯನ್ ಆಂಧ್ರ ಸಂಶಯಪರೋ ರಾಜನ್ ಕರ್ಮ ಬಂದೇರ್ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷೋ ರಾಮಚರಿತಂ ಶ್ರವಣೇರುಪದಾರಯನ್ ಆಂಡ್ರಸಂಶಯಪರೋ ರಾಜನ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧೇರ್ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷೋ ರಾಮಚರಿತಂ ಆಂಡ್ರಸಂಶಯಪರೋ ರಾಜನ್ ಕರ್ಮ ಬಂಧೇರ್ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಪುರುಷ ಮಾತಾಜಿ ಪುರುಷೋ ರಾಮಚರಿತಂ ಶ್ರವಣೇ ರೂಪದಾರಯನ್ ಆನ್ ಸಂಶಾಪರೋ ರಾಜನ್ ಕರ್ಮ ಬಂದೇ ಪುರುಷೋ ರಾಮಚರಿತಂ ಶ್ರವಣೇ ರೂಪದಾರಯನ್ ಆನುಸಂಶಯ ಪರೋ ರಾಜನ್ ಕರ್ಮ ಬಂದೇ ಪುರುಷ ಕೋಯಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಮಚರಿತಂ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೆ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪೋ ಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಥಾ ಕೋ ಶ್ರವಣೆ ಕಾನೋ ಸೆ ಉಪಧಾರಯನ್ ಶ್ರವಣ ಕರ್ಕೆ ಆಂಡ್ರ ಸಂಶಯಾಪರ ಈರ್ಷ್ಯಾ ಸೆ ಪೂರಿ ತರ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ರಾಜನ್ ಹೇ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಕರ್ಮ ಬಂಧೇ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಬಂಧನ್ ಸೆ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾತಾ ಹೈ ಅನುವಾದ ಔರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ದ್ವಾರ ಹೇ ರಾಜ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಜೋ ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮಚಂದ್ರಕ್ಕೆ ಗುಣೋ ಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಥಾವೋ ಕೋ ಕಾನೋ ಸೆ ಸುನ್ತಾ ಹೈ ವಹ ಅಂತ ತೋ ಘತ್ವಾ ಈರ್ಷ್ಯಾ ಕೆ ರೋಗ ಸೆ ಮುಕ್ತ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ ಔರ್ ಫಲಸ್ವರೂಪ ಕರ್ಮ ಬಂಧನ್ ಸೆ ಛೂಟ ಜಾಯೇಗಾ ಔರ್ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬತಾ ರಹೇ ಇಸ್ ಜಗತ್ ಮೇ ಹರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಿಸಿ ನ ಕಿಸಿ ಸೆ ಈರ್ಷ್ಯಾ ಕರ್ತಾ ಹೈ यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्त जन्म मृत्यु के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो पाता। जब तक कोई जन्म मरण के बंधन से पूर्णतया मुक्त नहीं हो जाता तब तक वो सनातन धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। देह की उपाधियों से प्रभावित होकर मनुष्य ईर्ष्यालु बनता है, किंतु मुक्त भक्त को शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं रहता, अतएव वो दिव्य पद पर पूर्णतया स्थित रहता है। भक्त किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता, यहां तक कि अपने शत्रु से भी नहीं, क्योंकि भक्त ये जानता है कि भगवान उसके सर्वोच्च रक्षक है, अतएव वो सोचता है तथाकथित शत्रु मेरा क्या बिगाड़ सकता है। इस तरह भक्त अपनी सुरक्षा के बारे में आश्वस्त रहता है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भज्याम्य हम, जो जिस अनुपात में मेरी शरण में आता है उसी के अनुसार मैं उसकी रक्षा करता हूँ। अतएव भक्त को पूर्णतया ईर्ष्यावीन होना चाहिए और विशेष रूप से अन्य भक्तों से। दूसरों से ईर्ष्या करना महान अपराध है और ये वैष्णव अपराध कहलाता है। जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वो निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमा प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम रामो हरे 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 कृष्णा। तो बलराम शक्ति प्रभु को मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ये श्लोक, उन्होंने कहा कि आज इस श्लोक से हम रामनवमी के संबंधित और हमारे भक्ति के जीवन में खास कर भक्तों के संग में रहते हुए किस तरह का आदान प्रदान होना चाहिए। हाँ, तो ये बहुत गंभीर विषय है, फिर भी जो कुछ हम भक्तों के संग में सुनते हैं तो उसे दोहराते हैं। हाँ, तो वैसे योग्यता नहीं है क्योंकि विषय बहुत गंभीर हैं, फिर भी रामायण से बहुत सारे हम सीख सकते हैं। हाँ, राधा गोपीनाथ प्रभु ने बहुत ही अच्छी तरह से विवरण किया किस तरह से रामायण की रचना हुई। हाँ, तो उसमें से एक विशेष बात है कि वाल्मीकि मुनि पूछते हैं, क्या इस व्यक्ति, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति है गुणवान, गुणवान यानि सब तरह से उसमें गुण पूर्ण है। आजकल किसी को इंटरेस्ट है गुणवान बनना? यस, माता पिता भी चाहते हैं कि मेरा बेटा धनवान बने, क्योंकि धनवान बन जाएगा तो समाज उसको अपने आप गुणवान समझेगा। हाँ, सब इज्जत देंगे, आदर करेंगे, सब कुछ होगा। तो धनवान बनना जरूरी है या गुणवान बनना जरूरी है? प्रभु जी बोलते हैं गुणवान बनना चाहिए। तो उसमें गुणवान कोई उतना आसान नहीं है, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हम सोचेंगे तो बोले यार ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो नारद मुनि कहते हैं कि है, और वो कौन है? वो है भगवान राम। लेकिन भगवान है ना, वो तो भगवान है। तो यही है कि भगवान जब अवतरित तो ऐसे ही अवतरित, उनका तो अनेक रूप हैं। जब वो अवतरित होते हैं तो कभी कोई भी योनि में आ सकते हैं। हाँ, कभी मछलियों की योनि में आते हैं तो क्या कहते हैं उनको? मत्स्य अवतार। हाँ, तो फिर वो तैरते हैं। तो कभी मनुष्य के समाज में आते हैं तो उनको सेतु बनाना पड़ता है। क्या उनमें वो शक्ति नहीं है? क्या वो पार नहीं कर सकते? भगवान वही है, लेकिन अलग अलग अवतार में आते हैं। जब रामचंद्र के इस रूप में आते हैं तो खास कर आज के श्लोक में भी बताया है, पुरुषो रामचरितम, यानी वो मर्यादा सब गुणों से परिपूर्ण ऐसे गुण। और यही नहीं, सिर्फ मनुष्य लोग किस तरह व्यवहार करते हैं उसी तरह से व्यवहार करते। तो इसलिए उनको लंका जाना है तो मनुष्य थोड़ी तैर के जा सकते हैं, तो उन्होंने उसी तरह का व्यवहार किया। लेकिन खास बात यह है, जब आते हैं तो समाज में हमें किस तरह से मनुष्य कैसे होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में तो सब यही दिखाते हैं कि एक मनुष्य को कैसे होना चाहिए। शुरुआत मनुष्य को कैसे होना चाहिए, उसके बाद एक पुत्र कैसे होना चाहिए, एक राजा कैसे होना चाहिए, एक पति कैसे होना चाहिए, एक भाई कैसे होना चाहिए, एक क्षत्रिय कैसे होना चाहिए। हर तरह के जो एक मनुष्य समाज में कैसे गुण होना चाहिए, वो अपने लीला के द्वारा, जब वो ऐसे लीला हम सुनते हैं तो समझ में आता है कि कैसे रहना चाहिए। तो गुण तो अनेक है, तो उसमें से जब नारद मुनि बताते हैं शुरुआत में तो उन कहते हैं वो तो धर्म परायण है, यानी धर्म के लिए, और वो कृतज्ञता उनमें है। कृतज्ञता का मतलब है कि अगर किसी ने कुछ हमारा अच्छा किया है तो जीवन भर हम कभी भूलेंगे नहीं। हाँ, हमारा ऐसा है कि हमने किसी का अच्छा किया तो हम जीवन भर नहीं भूलेंगे, याद दिलाते रहेंगे मैंने किया था। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि किसी ने कोई अच्छा किया है तो उसे हमें नहीं भूलना चाहिए, और अगर हमने किसी का अच्छा किया है तो उसे, और बहुत ही मधुर बोलते हैं, जो ज़्यादा जोर से नहीं बोलते हैं, जब भी बोलते हैं तो बहुत ही ऐसा लगता है सामने वाले को और सुने, और दिखने में भी इतने सुंदर, ऐसे उनका रूप था। हाँ, इतने सारे गुण की प्रजा तो वहाँ पे अयोध्या में तो पूरा सब ने अपना दिल खो दिया था। तो इसलिए अनेक ऐसे लीलाएं हैं, हम कुछ ऐसे प्रयास करेंगे। हाँ, सो लीला कहने के पहले, ये जो सुखदेव गोस्वामी, जो ये किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को बोलते हैं। तो परीक्षित रामायण तो तुमने तो बचपन से सुना है, तो मैं इतने विवरण नहीं करूंगा, बहुत संक्षेप में बता दूंगा। तो महाराज परीक्षित बचपन से, यानी सुनो कभी की बात है, 5000 साल पहले की बात है, तभी भी रामायण के बारे में बचपन से सब लोग जानते थे। तो आज की जो आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है उसमें एक बहुत वैसा एक जोक आता है, एक एक समथिंग एक जोक जैसे है। स्कूल में एक इंस्पेक्टर गए, खास करके इंस्पेक्टर लोग जाते हैं स्कूल में देखने के लिए कि सब बच्चों को सही तरह से पढ़ाई होता है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। तो उन्होंने सब कुछ अच्छा बताया क्या होना चाहिए। तो अध्यापक बैठे थे, उपाध्यापक बैठे थे, और उन्होंने सब कुछ कहने के बाद पूछा बच्चों से, रामायण तो मालूम होगा ना आप लोगों को, सब बच्चे हाँ हाँ करके हाथ उठाया। क्योंकि जब बच्चों को जब भी हम पूछते हैं कुछ कि ये मालूम है तो हाँ बोलते हैं, तो उन्होंने हाँ बोल दिया सर। तो उन्होंने सवाल किया, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? वो थोड़ा आवाज ऐसा था, इंस्पेक्टर पूछे बच्चों को, तो सब बच्चे शांत और वो अध्यापक सब लोग शांत, ये इंस्पेक्टर क्या पूछ रहे हैं, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? तो कोई आवाज ही नहीं आ रहा, तो उत्तर देख रहे हैं, बाजू में देख रहे हैं, बाबा क्या है। फिर उन्होंने देखा पीछे एक लड़का कुछ ऐसे ऐसे कर रहा है, तो बोलते हाँ तुम बताओ किसने तोड़ा शिव जी का धनुष? तो डर के, नहीं मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। तो इंस्पेक्टर एकदम बोलते हैं क्या हो रहा है, ये लड़का ऐसा जवाब दे रहा है मैंने नहीं तोड़ा। तो उसने वो अध्यापक की तरफ देखा ऐसे एकदम चकित होकर, रे क्या चल रहा है। तो वो इंस्पेक्टर जो आए थे देखने, उनको देख के बोल रहा है, नहीं मुझे लगता है इसी ने तोड़ा है। हाँ जो तोड़ा है ना वो हमेशा ऐसे बात करता है कि नहीं नहीं मैंने नहीं तोड़ा, मैंने नहीं तोड़ा। ये अध्यापक ऐसे जवाब दे रहा है तो स्कूल में क्या हो रहा है। तो फिर वो बाजू में बैठे थे दूसरे, उनकी तरफ देखने लगे, पूछे कि बाबा ये क्या चल रहा है क्या? तो उनके कानों में बोलते, कोई प्रॉब्लम है सर, वो अगले बजट में हम एडजस्ट कर देंगे उसको। तो ये हाँ ऑफकोर्स हमारे गुरुकुल के बच्चे यहाँ पे श्लोक जानते हैं, स्मरण करते हैं। तो लेकिन आजकल का जो शिक्षा प्रणाली है उसमें इतना दबाव होता है दूसरे विषयों को सीखने में कि इतिहास के ऐसे बहुत सारे मालूम होते हैं, हाँ स्पोर्ट्स के बारे में मालूम होता है, उद्योगपतियों के बारे में मालूम होता है, बड़े बड़े राजा ऐसे अंग्रेजों के राजा, लेकिन हमारे ही हाँ जो एक संस्कृति है उसके बारे में कम होता है, ये दुर्भाग्य। तो ये गुणवान राम इतने गुणवान कि घुन, हाँ तो इस तरह के वातावरण में जो एक घटना होती है अयोध्या में, हम इससे सीख सकते हैं कि हमारे निजी जीवन में कितना, ये भी एक बहुत विशेष कर आज के जो तात्पर्य में प्रभुपाद ईर्ष्या के बारे में बताते हैं कि कैसे हम स्वाभाविक वैसे हम भगवान के सेवक हैं, हम सेवक हैं, ये सच्चाई है कि परमात्मा है, हम आत्मा है और हमारा संबंध है उनके सेवक है। लेकिन अगर सेवक कुछ और कुछ सुनता है, धीरे 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 वो सेवक अपना निजी जो स्वभाव है उसे भूल जाता है कि वो सेवक नहीं है। तो ये घटना होती है अयोध्या में, हाँ जब दशरथ महाराज, उनको एक ऐसा दिल में एक ऐसा लगता है कि मेरा लड़का इतना, हाँ पूरे अयोध्या के प्रजा इतने प्रेम करते हैं, तो अभी समय आ गया है कि मैं मेरा राज गद्दी मैं बेटे को देना चाहिए। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि हर एक कुछ भी निर्णय लेने से पहले पूछना पड़ता है ना, तो उन्होंने पूछा तुम लोगों को क्या लग रहा है? तो उन्होंने बोला वो से, तो बोले प्रजा को क्या लग रहा है? तो उन्होंने घोषणा किया कि राजा ने ऐसे ऐसे निर्णय लिया है कि राम तो इतना बड़ा आवाज हो गया अयोध्या में। तो दशरथ भी चकित हो गए, दशरथ को समझ में नहीं आ रहे ऐसा तो कभी आवाज हुआ ही नहीं था। तो उन्होंने मंत्रियों से पूछा, अब क्या बात है, क्या ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या बोला? नहीं नहीं आपने सही बोला, लेकिन ऐसा आवाज क्यों आ रहा है? तो बोलते प्रजा बोल रही है कि दशरथ ने साठ हजार साल से वो राज्य कर रहे हैं, तो प्रजा ऐसे बोल रहे, थोड़ा डर रहे थे बोलने को दशरथ, प्रजा ऐसे बोल रहे हैं कि महाराज दशरथ ने पहली बार ऐसा कोई अच्छा निर्णय लिया है। ऐसा नहीं, यानी एक कि तो दशरथ मैं 60,000 से मैं राज्य कर रहा हूं, क्या क्या पहले मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं। कहने का मतलब यह है कि राम से इतना प्रेम था कि लोगों का, तो फिर सब तैयारियां होने लगी, सब तरह फैल गया, सब कितने प्रसन्न, सब घर में सब श्रृंगार होने लगे, सब लोग उत्साह में खुशी में। तो उसी वक्त मंत्रा ने देखा है क्या हो रहा है, तो मंत्रा पूछी क्या है, तो मंत्रा को बताया गया कि ऐसा ऐसा है, एकदम अभी अभी पता चल गया है ना। तो मंत्रा गई अपने रानी के पास, क्योंकि वो कैके की दासी थी, तो कैके को जाके बताया तुम्हें मालूम है क्या हो रहा है, कैके को नहीं मालूम था। तो उन्होंने बताया कैके को, देखो राम राजा बनेगा। तो कैके तो इतना खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, इससे अच्छा क्या, क्योंकि कैके का इतना प्रेम था राम से। एक कथा में आप देखिए किस तरह से जो सच्चाई है, मंत्रा थोड़े से सच्चाई को कैसे मिला के बोलती है, और जिससे कैसे हृदय का पूरा परिवर्तन हो जाता है, जो एक निर्मल कोमल हृदय भी किस तरह कठोर बन जाता है। तो मंत्र आके कहती है, तो कहके इतना प्रसन्न होकर उसको बोलते, कितना अच्छा तुमने समाचार लाया। उसने एक गहने निकाल कर उसको मंत्रा को दे दिया, मंत्रा ने वो गहने उठाकर सीधा ऐसा फेंक दिया। तो कहके क्या हो गया तुम्हें, क्या बात है, तुम क्षत्रिय रानी हो, तुम्हें मालूम नहीं क्या चल रहा है राज्य में। तो बोलते क्या चल रहा है, तुम्हें मालूम है राम राजा बन रहा है, तो बहुत अच्छा है ना, वो राजा बनने के बाद, लेकिन तुम्हारे पुत्र का क्या, अरे मेरा पुत्र उसके बाद राजा बन जाएगा, तुम बेवकूफ औरत हो, और तुम्हें मालूम है ये सब जल्दबाजी में हो रहा है, भरत तो है ही नहीं यहां पर, ऐसा क्या है कि इतना जल्दी करने का क्या रीजन है, इसका वजह क्या हो सकता है। ये सच था कि भरत नहीं था वहां पे। अभी वैसा देखा जाए तो भरत का तो सवाल ही नहीं आते, वो तो सबसे छोटा था, हाँ, लेकिन जब ऐसा बोला तो फिर कहके ही थोड़ा सोचने लगी, फिर भी उसने नहीं माना, क्यों, उसके बाद भरत बन जाएगा। तो मंत्रा ने कहा, सुनो अब राजा का तुम्हारे ऊपर ज्यादा प्रेम है, अब राम राजा बनेगा तो कौशल्या रानी होगी, और कौशल्या को मालूम है कि राजा तुम्हारे से ज्यादा प्रेम करता है, तो उसका पूरा फायदा उठाएगी, अभी तुम दासी बन के रहेगी, अभी तुम रानी जैसी हो, तुम दासी बन जाएगी। और यही नहीं, राम को मालूम है कि भरत में बहुत सारे ऐसे गुण हैं, और आगे हो सकता है कि राम उसको कारागृह में डाल सकता है या उसको मार भी सकता है। सिर्फ इतना सब सुनने के बाद कैके ही थोड़ा सा तो यही देख लिया था, मंत्रा सिर्फ यही चाहती थी, ये मंत्रा ने ऐसा क्यों किया ऐसे। देखो जब भी कोई बोलता है तो कुछ तो उसका निजी स्वार्थ था, उसका स्वार्थ क्या था उसमें, कि उसके शरीर कुरूप थे तो लोग उसके बहुत मजाक कर रहे थे, लेकिन जब वो कैके की दासी बन गई तो कोई उसकी मजाक नहीं कर रहे थे, तो उसको लगा अभी फिर से अगर मैं, हाँ अगर कैके का स्तर नीचे हो जाएगा तो फिर से लोग मेरा ये करेंगे, वो उसे नहीं पसंद था, वो चाहती थी कि हमेशा कैके ही, तो वो उसका निजी था, तो उस स्वार्थ की भावना से उसने ऐसा बोलने लगा उसको। तो जैसे उसको पता चला कि कैके अभी मेरे वश में है, तो तुरंत जब कैके पूछी मुझे अभी क्या करना चाहिए, हो गया ना, जैसे पूछा मुझे अभी क्या करना चाहिए, इसका मतलब अब ये मेरे वश में। तो फिर मंत्रा ने याद दिलाया, तुम्हें याद है महाराज दशरथ ने तुम्हें दो वचन दिया था, वरदान दिया था, वरदान। तो हाँ, कैकेयी ने बोला, या मुझे याद है, यही है समय वो पूछने का। तो क्या है, क्या पूछना चाहिए? वो भी उससे पूछने लगी मंत्रा से। जब तक राम यहां रहेगा, प्रजा भरत को स्वीकार नहीं करेगी। इसलिए पहला है कि राम को 14 साल के लिए वनवास भेज। कैकेयी को सही लगा। दूसरा है, भरत को राजा बनाओ। ये कहने के बाद कैकेयी को मंत्रा ने कहा, इतना याद रखना, दशरथ महाराज इसे कभी नहीं स्वीकार करेंगे, तुम तैयार रहना। अगर हो किसी तरह से तुम कलेश, तुम बदलना नहीं हमके विचार को। तो मंत्रा ने पहले से वो भी तैयार कर दिया, कि पूरी तरह से इसको तैयार किया कि अभी क्या होने वाला है, आगे क्या करना चाहिए। इसके बाद तो हम सब जानते हैं क्या हुआ। तो आप देखिए कि किस तरह एक सिर्फ ऐसे कुछ सच्चाई थी उसमें मंत्रा ने, कि दशरथ महाराज को यही समय था क्या? हाँ, भरत नहीं है, वो भी जल्दबाजी किया, कल ही करना है, उसमें थोड़ा सच्चाई था। लेकिन उस सच्चाई को उसने अपने निजी स्वार्थ के साथ इस तरह से मिला के उसको ऐसा भूला उसने, कि कैकेयी जैसा जो बहुत ही प्रेम था उसको राम के लिए, सिर्फ इतना सुनकर उसके इतना द्वेष आ गया, इतना क्रूरता आ गई, इतना ईर्ष्या आ गया, कि वो वशिष्ठ मुनि, पूरे प्रजा के लोग, सब लोग निंदा करने लगे। यही नहीं, उसको देखना पड़ा कि राम को भेज रहा है, राम से इतना प्रेम था उसको, राम को वनवास जाना पड़ रहा है, सीता को देख रही है वो, सीता को बक्कल पहनना पड़ रहा है, उसका थोड़ा भी हृदय में, यानी अयोध्या में पूरा इतना एक दुख ऐसे भर गया, एक सागर की तरह, उसका एक बूंद भी कैकेयी को थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ा उसका। सो कितना गंभीर विषय देखना चाहे तो। हाँ, हमें लगता है ये तो रामायण की कथा है, लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे निजी जीवन में भी, हाँ, घर में हो या समाज में हो या किसी हमारे व्यवसाय के जगह में हो, ये अक्सर होते रहता है। हाँ, एक कोई ऐसा रहता है व्यक्ति आकर दोनों के बीच में ऐसे कुछ बोल देता है। कौशल्या और कैकेयी के बीच में बहुत ही अच्छा प्रेम था, उनके बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं था। कौशल्या जानती थी कि राजा कैकेयी से ज़्यादा प्रेम है, लेकिन उनके बीच में कभी ऐसा कुछ गैर समझ नहीं था। बहुत ही फैमिली उनका इतना अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस पूरे उसको संतुलन को बिगाड़ना है तो सिर्फ एक थोड़ा सा कान में डाल दिया। तो ये हर दिन ऐसे होता है। हाँ, जहाँ पे ऑफिसों में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे देखते हैं कि ऐसे दो व्यक्ति, किसी को प्रमोशन मिल रहा है, किसी के प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो उसमें एक किसी का स्थान लेता है, ऐसा बोलता है, ऐसे बोलता है, उसके बाद दो लोग इतने बड़े बनते हैं कि उसके बाद कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कैकेयी कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। सो कैसे हो सकता है कि इतना, यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि सबसे बड़ा एक ये है कि सबका कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या अगर है तो यहाँ बताया कि कोई भक्ति में प्रगति कर नहीं सकता है, लेकिन सबका मूल कारण है कि ईर्ष्या। हम इसलिए हम भगवान से अलग हो गए हैं, हम यहाँ हो गए आए हैं, ईर्ष्या ही सबका बुनियाद है। और ईर्ष्या से जब इस तरह का कोई विषय आता है सुनने में, तो फिर वो जाग जाता है और द्वेष बढ़ता है। इसलिए हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद, उन्होंने कहा है कि हमारे संस्था को टूटना है तो बाहरी शक्ति से नहीं टूट सकता है, बाहर की शक्ति कोई नहीं टूट सकता है। हमारा नियम पालन करना, हमारे सिद्धांत जो है इतना स्पष्ट है, हाँ, कि हम किस तरह, हम शरीर नहीं, आत्मा, भगवान, इसके बारे में और इतने सारे कथा है, कोई नहीं इसे तोड़ सकता। अगर संस्था टूटता है तो अंदर से टूट सकता है। तो ये एक ऐसे एक सिर्फ इस घटना से, ऑफकोर्स इसके बाद राम ने किस तरह उसे स्वीकार किया, वो भी एक गुणवान का ही एक गुण है। हाँ, पूरे अयोध्या में वशिष्ठ मुनि ने कहा, कौशल्या ने कहा, पूरे प्रजा ने कहा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। सब लोग ने कहा, कोई भी सोच सकता था, अरे सब लोग कह रहे, और यहां पे तो सिर्फ मेरे पिताजी का, वो भी पत्नी के कुछ कुछ वरदान की, सोच सकते थे कि ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है। लेकिन उन्होंने वो सोचा नहीं, उन्होंने सिर्फ सोचा कि मेरा जो कर्तव्य क्या है, मेरा ड्यूटी क्या है, तो ड्यूटी के लिए उन्होंने वो सब कुछ त्याग किया। सो जब हम गुणवान कहते हैं, राम गुणवान है, तो अनेक ऐसे गुण हैं, उसमें से ये एक गुण को हम ये कर सकते। तो उसके बाद हम कथा तो बहुत ऐसे लंबी है, बहुत सारे विषय आते हैं, फिर भी कहीं ऐसे कुछ हम विशेष करके कुछ घटनाओं को लेकर सीखेंगे कि क्या एक गुणवान व्यक्ति यानी कैसे होना चाहिए। तो जब युद्ध हो जाता है, विजयी होते हैं, राम हनुमान को कहते हैं, जाओ सीता को बोल दो, अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है, रावण का वध हो गया। तो हनुमान गए सीता के पास, सीता को कहा, रावण का पराजय हो गया, अभी हमें यहां से निकलना है। फिर हनुमान ने सीता को कहा, माते मैं जब पहली बार भी आया था, मैंने देखा था कि यहाँ पे बहुत सारे ये जो लोग हैं राक्षसी, तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहे थे, तुम सिर्फ अभी एक इशारा करो, मैं इन सबको मैं मार डालता हूं। तो सीता ने क्या जवाब दिया, सीता हनुमान को कहती है, एक कथा बताती है सीता, सिर्फ ये बताने के लिए कि एक गुणवान व्यक्ति कैसे होना चाहिए। तो एक कथा बताती है कि एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार करते करते हुए बहुत ही अंदर चला गया, फिर देखा कि सामने एक शेर आ गया। तो जैसे ही शेर को देखा, तो शिकारी शेर के सामने, शिकारी डर गया, उसने ये नहीं अपेक्षा किया था कि शेर आएगा, तो भागने लगा। वो तो भागने लगा, पीछे देखता है तो शेर भी भाग रहा है, लेकिन उसका भागने में और शेर के भागने में बहुत फर्क है। उतना तो उसको अक्ल था, समझ गया कि अभी नहीं होगा, कुछ ही समय, तो तुरंत उसने पेड़ के ऊपर चढ़ गया। तो शेर ऐसे ही हाथ मारा तो थोड़ा सा बच गया फटकर, और अपने जान बच गया बोलकर ऊपर चढ़कर एक जाकर फांदी में जाकर बैठ गया। थोड़ा नजर उपार कर ऊपर देखता है, एक भालू बैठा है पेड़ के ऊपर। ये सीता बता रही है ये कथा। नीचे देखता है, नीचे शेर है, ऊपर देखता है, ऊपर भालू है। हाँ, और घबरा गया एकदम, अभी क्या करेंगे। तो बैठ गया वहां पे डर से। हाँ, बैठ के थोड़ा ऐसे एकदम, हाँ डर डर से ऐसे वहीं पे एकदम आश्रय लेने लगा। तो शेर नीचे से भालू को बोलता है, देख बालू, बालू ही बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ बेरी बालू कलता ना कड़ा ना बालू मंजे क्या कलता ना बालू। हाँ, बालू को बोलता है, देख हम लोग इस जंगल के जानवर है, हम लोग तो मित्र है ये, लेकिन मनुष्य है ना, ये मनुष्य लोग हमें कुछ ना कुछ हमें पीड़ा देते हैं, शिकार करते, ये लोग हमारे हित चिंतक नहीं है, तो बस इस मनुष्य को ना तू सिर्फ ढकल देना है ऐसे, फिर मैं मेरा अच्छे से मैं भोजन कर लेता हूँ, उसके बाद में तुम्हारे लिए कभी भी कुछ मेरी तरफ से कुछ भी काम चाहिए, मैं हमेशा आऊँगा, हम लोग आराम से जंगल में रहेंगे। तो बालू बालू बोलता है, नहीं ये बालू है, ये मनुष्य नहीं है। बालू बोलता है, ये पेड़ मेरा घर जैसा है, और ये आदमी डरा हुआ मेरे घर का आश्रय लिया है, डर गया है बेचारा, डरा हुआ है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं पशु है, देखो विचार बहुत ऊंचे हैं इसके। तो कुछ देर के बाद तो शेर बोलता है, क्या बालू है यार, कुछ देर के बाद भालू थोड़ा थक गया होता है, भालू सो जाता है, तो भालू सो जाए तो ये मनुष्य थोड़ा सा जाग जाता है, तो शेर मनुष्य को देखता है। देख अभी अभी क्या बोलता है शेर, किसको बोलता है अभी? मनुष्य, देख भालू सो गया है, अभी ये तेरे मेरे बीच में है, उसको नहीं मालूम क्या है, तू क्या करना, जाके वो भालू को नकल देना, हाँ, और मैं भालू के साथ मेरा सब कुछ, हाँ मेरा हो गया, मैं प्रसन्न हो जा, मैं खुद तुम्हें इस जंगल से बाहर तक छोड़ने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, तो तुम्हें क्या करना क्या है, खाली उस भालू को ढकलना है। तो आपको क्या लगता है क्या किया मनुष्य ने? हाँ हम मनुष्य है ना, हम समझ सकते हैं। तो उसने जाके भालू को ढकल दिया, तो भालू जैसे गिर रहा है जाग गया, एकदम गिर रहा है जाग गया, जाके जाके उसने एक पकड़ लिया बांदी को, तो गिरा नहीं नीचे, नीचे नहीं पहुंच, तो देखा अरे क्या हो रहा है, अरे मनुष्य ने ढकल दिया, तो धीरे से चढ़कर ऊपर चढ़कर फिर अपने जाके स्थान पर बैठता है। तभी शेर भालू को बोलता है, देखा देखा मैंने बोला था ना, ये मनुष्य लोग ऐसे ही होते हैं, अभी तुम्हें समझ में आया, इसलिए मैं बोलता हूं तुम अभी तो समझदारी से ये मनुष्य को तुम ढकल दो। तभी वो भालू बोलता है, नहीं, मेरे में अगर किसी ने कुछ बुराई भी किया है तो मैं ये नहीं समझता है कि ये कारण है मेरी बुराई का, इसने मुझे किया है, मैं उसको माफ कर देता हूं। तो ये कौन बोल रहे कथा? सीता माता फिर हनुमान को बोलती है, देख हनुमान, ये लोग सब थे ना जो रावण के, हाँ रावण के टीम के वाले, हाँ सेवक हनुमान, ये लोग तो रावण के डर से वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हाँ तो इसलिए मैं उनको क्यों दोष दूँ, तो इसलिए मेरे दिल में इनके लिए कुछ नहीं है, मैं तो इनको तो माफ कर दिया। तो ये भी एक ऐसा गुण है, किस तरह का गुण है, माफ कर दिया, और कुछ नहीं हृदय में, कुछ है ही नहीं, विचार ही नहीं है ऐसे। तो हनुमान भी ये सुनकर एकदम मुग्ध हो जाते हैं, बाप रे ऐसा कैसा है। सो ये है सीता माता, हाँ सीता का इस तरह का। तो राम वैसे गुणवान, ये हम बहुत सुनते हैं कि उनमें गुण है, लेकिन ये सब गुण होने के बाद भी लोग राम के निंदा करते हैं। तो आप सोचिए, भगवान के अगर इतने सब गुण होने के बाद निंदा करते हैं तो हम जैसे लोगों की क्या बात है? हाँ हमारी कोई निंदा करते तो हम बहुत ही डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेकिन भगवान की निंदा हो रही है, और किस तरह के भगवान? मर्यादा पुरुष, पुरुषोत्तमम, उनका चरित्र ऐसा है कि सब कुछ परिपूर्ण, ऐसा कोई उसमें गुण नहीं है, और उसकी भी निंदा करते हैं। तो ऐसे एक हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक विशेष कर हाँ उनका जो, हाँ ये कहते हैं ना राम ने ऐसा कैसे किया, हाँ हाँ ये एक बहुत हमारे प्रचार कार्य में ये विषय आता है कि राम ने, हाँ गर्भवती पत्नी को कैसे उन्होंने घर से निकाल दिया, किस तरह का पति है ये, कुछ है कि नहीं मन में, कुछ है कि नहीं कुछ, वो भी गर्भवती, तो इसको जवाब देना बहुत, हाँ किस तरह का भगवान क्या सिखाते हैं। तो आगे के कुछ समय है हमारे पास, तो हम उस, हाँ तो हम उस जो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग ऐसे विषय होता है जहाँ पे लोग कई बार पूछते हैं, एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक जहाँ पे मैं कई साल पहले मैं प्रैक्टिस में बैठा था, तो एक, हाँ उन्होंने देखा कुछ मेरे वहाँ किताब पढ़े थे, तो उनको लगा ये कोई आध्यात्मिक विषय में इंटरेस्ट ले रहा है, तो महिला थी, पढ़ी लिखी थी, हाँ तो उसको बहुत गर्व था कि मैं जिसमें जानता हूँ, तो उसका भी गलती नहीं था कुछ, क्योंकि समाज में ये विषय को ऊपर कोई भी एकदम ही हो सकता है। तो उन्होंने सिर्फ मुझसे यही सवाल किया, यही जो मैंने बताया ना, ये सवाल क्यों किया, ऐसा कौन कर सकता है क्या, कुछ है कि नहीं, कुछ थोड़ा तो दिल में होना चाहिए। तो वो तो मुझे कुछ जवाब देने का मौका ही नहीं दिया, वो सीधा गुस्से से उठ गई और जाकर दरवाजा ऐसे ढांग करके बैंग कर कर चली गई। सो इतना इस विषय में भगवान के बारे में, हाँ हम एक तरह बोलते हैं कि भगवान, हाँ तो इसलिए हमें भी समझना चाहिए कि भगवान कौन होते हैं। हाँ भगवान जो कुछ करते हैं उसमें कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ ही इज द फादर ऑफ मोरालिटी, वो कुछ भी करते हैं। लेकिन हम मनुष्य, हम अपने अनुभव और विचारों से सोचते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये तो गलत है, हम ये करने लगे। लेकिन वो तो आज ऐसे करेंगे, खुद एक कुछ तरह के एक नियम बनाएंगे और दूसरे दिन वो नियम को तोड़ डालेंगे, तो इसका मतलब जो दूसरे दिन वो करते हैं वो सही है, उसके बाद वो दूसरा कुछ करेंगे वो सही है, उसके वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो तो पुरुषोत्तम धर्मपरायण सब कुछ स्रोत है सबके। लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहे तो हम उनके ऊपर, हाँ जैसे भगवान कृष्ण के ऊपर ये एक दोष लगाया जाता है ना, सबसे बड़ा कॉमन दोष, हाँ कुछ नहीं मिला तो बोलते ए ये रासलीला ये क्या है। हाँ पहला ये सवाल हमेशा आ जाएगा रासलीला के बारे में। तो इसलिए भगवान कौन है ये जानना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी हमारे शुद्धिकरण के लिए हम कुछ प्रयास करेंगे कि ऐसा क्या कारण था कि भगवान ने, रामचंद्र भगवान ने सीता को कितने अयोध्या में, कितने उपयुद्ध के बाद अयोध्या राज कर रहे थे, उन्होंने 11,000 साल तक राज्य किया और उसके ये कुछ शुरुआत का समय है कि उन्होंने कुछ सुना अपने राज्य में कि कोई कह रहा है कि मैं कोई राम जैसा नहीं हूँ, कि वो अपने, हाँ वो पवित्र नहीं है सीता, फिर भी उन्होंने, तो राम सोचने लगे। तो चैतन्य चरण प्रभु की एक किताब है जो इंग्लिश में है, तो मैं उस किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक एक्सप्लेन किया है कि चार खास ऐसे रीज़न हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। हाँ तो एक रीज़न ऐसा है कि उन्होंने एक 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 तरह का वो एक तपस्या था उनके लिए, इंग्लिश में सैक्रिफाइस कहते। हम कैसे समझेंगे, अगर राम को ऐसे लग रहा था कि मेरा नाम बदनाम हो रहा है, कि मेरी पत्नी ऐसे ऐसे उल्टा है और मैं राजा हूँ, तो इसलिए उन्होंने किया है, अगर ये सच है तो फिर राम फिर से विवाह कर सकते थे किसी से, उन्होंने फिर से किसी विवाह किया नहीं। अगर वो, अगर ये है लोग की समझ कि अरे राम ने इसलिए किया, तो राम तो जानते थे कि सीता में ऐसा कोई दोष नहीं है, वो युद्ध के बाद भी अग्नि परीक्षा हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी कोई प्रजा इस तरह मेरे बारे में सोच रहा है, तो ये सच है कि उसमें, तो उन्होंने इसलिए किया, फिर से उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि उन्होंने वचन दिया था अपनी पत्नी को, विवाह हुआ तो मैं सिर्फ पूरे जिंदगी भर एक ही पत्नी होगा मेरा। और यही नहीं, एक जो राजा होता है जो भी कार्य करता है अगर उसके साथ में रानी नहीं है तो कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि रानी साथ में होना चाहिए और रानी यहाँ नहीं है। तो जब यज्ञ करते थे राम, जब यज्ञ करते समय पुरोहित लोग पूछते हैं कि रानी का साथ में होना जरूरी है, तो फिर राम एक सुवर्ण सीता को बनाते थे, सुवर्ण रूपी सीता, और उस सीता को पास बढ़ाते थे और वो यज्ञ को पूर्ण करते थे। इससे क्या हुआ, इसका मतलब हाँ राम के दिल में ऐसा कुछ नहीं था कि वो सीता को उन्होंने बहिष्कार किया क्योंकि उनके हृदय में ऐसा कुछ था कि मैं कैसे इस तरह, मेरा नाम का सवाल है, मैं राजा, वो कुछ नहीं था। ये तो एक पूरी तरह से एक त्याग की भावना से उन्होंने किया था। दूसरा आता है, इसको आई डोंट नो हाउ हिंदी में कैसे बोलेंगे, एथिकल डिलेमा, एथिक्स, एथिक्स के यानी एथिक्स में एक समाज में एक एक पति का कुछ कर्तव्य होता है और एक राजा का कुछ कर्तव्य होता है. धर्म संकट है वो, तो धर्म संकट वो राजा है और पति भी हैं. अभी पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना, हाँ, और राजा का एक धर्म होता है कि प्रजा के लिए एक ऐसा उदाहरण बने. उन दिनों में समाज की उनकी संस्कृति वहाँ पे इतनी तीव्र थी कि जो भगवान के भक्ति में जो आगे बढ़ता है उसे श्रेष्ठ माना जाता था. यानी किसी का भी कोई व्यक्ति से कोई आसक्ति हो तो इसको वो अपने भक्ति के मार्ग में वो अनुकूल नहीं है. तो राम बताना चाहते थे प्रजा को, हाँ ये सच है कि पति होने के नाते मेरा कर्तव्य है, लेकिन राजा होने के नाते मैं इनको दिखाना चाहता था प्रजा को कि मेरा कोई पत्नी से आसक्ति नहीं है, वो कोई भी हो. अगर वैसे नहीं करते और वो कह सकते थे प्रजा को तुम लोग सब ऐसे ही गलत सोच रहे हो, तो प्रजा सोचती थी कि हाँ ये पत्नी से बहुत आसक्ति है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं. तो उन्होंने सिर्फ बस प्रजा के लिए कोई ऐसा चांस ही नहीं दिया कि भक्ति के लिए हमारे ऐसे कोई भी विषय हमारे प्रतिकूल है तो उससे आसक्ति रहना ये अच्छा नहीं है, उसे त्याग करना चाहिए, छोड़ना चाहिए. ऐसे उन्होंने उदाहरण करके दिया. हाँ, लेकिन पति का जो एक कर्तव्य था वो भी उन्होंने ऐसे निभाया. ये नहीं किया कि पत्नी को अपने राज्य से बाहर कर दिया. पत्नी तो वहीं पे थी, अपने राज्य थे. ऐसा भी नहीं कि उसको कोई देखभाल करने वाले कोई नहीं थे, वो तो वाल्मीकि मुनि के हाँ आश्रम में थे. तो उसका ऐसा नहीं कि वो अकेली है, तो वो उस तरह से किया. और तो ये दूसरा कारण. और तीसरा है, ये कहा जाता है कि कुछ ये वाल्मीकि मुनि रामायण में ही बताया जाता है कि कुछ ऐसा कुछ कारण है कि एक बार देवता लोगों को अपने असुर लोग एक बार इसकी आश्रय लिया. उन्होंने कयाति उन्होंने आई थिंक भृगु और आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम भृगु एंड कयाति, भृगु की पत्नी कयाति, कयाति घर में थी तो असुर लोग आ गए और देवतागण उनकी पीछा कर रहे थे. तो देवतागण आ गए और ख्याति को कहें कि असुर अंदर हैं, तो ख्याति ने असुरों का रक्षा किया और रक्षा ही नहीं किया, अपने शक्ति से देवताओं को पराजय कर दिया. तो देवता गए विष्णु के पास, तो विष्णु अपने सुदर्शन चक्र लेके आए और उन्होंने ख्याति का पराजय कर दिया. तो भृगु एकदम क्रोधित हो गए. तो भृगु ने विष्णु को शाप दिया, किस तरह से तुमने मेरे पत्नी को अलग कर दिया है, तुम अनेक ऐसे अवतारों में आओगे, कहीं बार तुम अपने पत्नी से अलग हो जाओगे. ऐसा भी एक कारण दिया गया है कि ये बस एक देने के लिए निमित्त मात्र, कि इसके लिए जब भगवान लक्ष्मी नारायण तो साथ में रहते हैं, जब राम सीता आते हैं तो कई बार उन लोगों का इस लीला में कई बार अलग हो जाते हैं. हाँ, हमारे गौड़ीय संप्रदाय में तो इस अलग होने का कुछ अलग ही मतलब दिया है कि जब अलग हो जाते हैं तो हाँ विरह भावना बढ़ता है, हाँ हाँ विप्रलंब प्रेम बढ़ जाता है. तो भगवान सब विप्रलंब प्रेम को जताने के लिए ये किया था, लेकिन ये भी एक कारण बताया गया है. इसको ज़्यादा हाँ कहा जाता है कि विप्रलंब जो है एक अग्नि की तरह है, अपने एक हवा की तरह. हवा जहाँ पे अग्नि होता है, हवा के उपस्थिति में अग्नि और प्रज्वलित होता है. सो इसी तरह से ये जो हाँ विरह है ये प्रेम को और बढ़ा देता है. सो ये है तीसरा कारण. कोई ना कोई कारण याद रहेगा आपको, लेकिन सबसे सबसे बड़ा कारण यह है कि निस्वार्थ. चौथा कारण, भगवान सिर्फ निस्वार्थ, सेल्फलेस. उनके हरेक इसमें आप देखेंगे शुरुआत से लेकर अंत तक वो सिर्फ निस्वार्थ. जैसे उन्होंने महाराज दशरथ को उन्होंने जब पिता ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए, तो उन्होंने कभी पूछा नहीं कि ये कैसा आया, ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया है, कोई भी बोल सकता था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि ये मेरे साथ गलत। हाँ, ही नेवर थॉट अबाउट हिज राइट, हक मेरा हक क्या है, ही ऑलवेज केप्ट हिज ड्यूटी एज अबाउ हिज राइट, इजन इट। आजकल के इसमें हम लोग ज़्यादा अपनी राइट्स मांगते हैं, क्यों ड्यूटीज के बारे में नहीं पूछता कि मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा ड्यूटी नहीं, मेरा मेरा राइट, ये मेरा हक है, मेरे को ये मेरे को मिलना चाहिए। तो राइट्स और ड्यूटी में अगर सब लोग खाली ड्यूटी की बात करेंगे तो समाज में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। सब लोग सब बोलेंगे कि नहीं मेरा ड्यूटी क्या है, ज़्यादा क्या होता है, सब लोग अपना हक मांग रहे हैं लेकिन अपना ड्यूटी के बारे में कोई नहीं पूछता। तो राम की कथा में हम सिर्फ यही देखते आ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने सिर्फ अपना ऊंचे सिद्धांत के लिए उन्होंने अपना हाँ जो हक है वो सब त्याग कर दिया। तो इसी कारण से उन्होंने पूरी तरह से उन्होंने अपना हक छोड़ दिया। यही नहीं कि सीता का भी उसमें वही भाग है। हाँ, सीता नहीं जाना, राम ने तो कहा सीता को तुम्हें नहीं आना चाहिए, ज़रूरत नहीं है वन में आने के लिए। हाँ, लेकिन सीता कहने लगी, सीता ने अपने ड्यूटी को ऊपर रखा, अपने राइट्स को नहीं, कि मेरा राइट है, मैं तो कभी बाहर गई नहीं है, मैं कैसे जाऊंगी जंगल में, मैंने कभी ज़मीन पे सोया नहीं है, मैं तो हमेशा अच्छी चीज़ खाई हूँ, मेरा ड्यूटी है, मेरे पिता ने कहा है कि आज के बाद हमेशा तुम राम के साथ रहोगे सुख दुख में। क्या मेरे पिता ने जो कहा क्या वो तुम झूठ ठहराना चाहते हो? जब राम ने सुना तो बोला ठीक है तुम मेरे साथ आ जाओ, नहीं तो राम नहीं चाहते थे, नहीं इसका मतलब है राम रक्षा करना चाहते थे अपनी पत्नी का, उन्होंने ही कहा कि तुम्हें भी मेरे साथ आना चाहिए, एक तरह का पति का हक हो सकता था, तो मेरे साथ आना चाहिए, उन्होंने कहा तो मेरे ना। लेकिन सीता ने अपना ड्यूटी बताया। तो ये जो अपना हक और ड्यूटी के बीच में भक्ति के मार्ग में हमें याद रखना है कि हमारा ड्यूटी ज़्यादा ऊंचा स्थान लेना चाहिए, हमारा हक नहीं, राइट नहीं। तो इस तरह अनेक ऐसे लीलाओं से हम सीख सकते हैं कि एक भक्तों के संग में रहते हुए हाँ गुणवान का अर्थ क्या होता है, गुणवान किसको कहते हैं, हाँ कृतज्ञता यानी हाँ क्या होता है, और इस तरह के अनेक ऐसे हम लीलाओं से, उसमें से एक और एक अच्छा लीला एक ऐसे आता है ये लक्ष्मण के बारे में, यानी हर एक जो रामायण के जो कैरेक्टर्स हैं उसमें इतना ये जो क्वालिटी है सेल्फलेसनेस का क्वालिटी है इतना भार दिखाई दे रहा है कि सिर्फ उसको हम थोड़ा सा भी ये करेंगे तो हमारे जीवन में कुछ उसमें हाँ थोड़ा भी लग गया तो हमारे भक्ति मार्ग के लिए बहुत ही अनुकूल हो सकता। तो ये है ये मैं पीछे जा रहा हूँ क्योंकि बलराम शक्ति प्रभु ने कहा है मुझे थोड़ा और 5 मिनट है। सो ये जब गौरांग प्रभु ने बहुत अच्छी तरह से बताया उस दिन क्लास में कि सीता के बारे में, सीता को डिस्ट्रैक्शन हो गया, किससे डिस्ट्रैक्शन हो गया, हिरण से, एंड दैट वाज द कॉज ऑफ हर डिस्ट्रक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्शन, हाँ, और आज के दिन डिस्ट्रैक्शन के लिए बहुत सारे हैं। हाँ, तो सीता ने जब फिर राम ने कहा नहीं ये, फिर लेकिन राम चले गए, लेकिन लक्ष्मण को कहा उन्होंने, लक्ष्मण तू यहां से हिलेगा नहीं, मैं जब तक वापस नहीं आऊंगा तू यहीं पर रहेगा। तो राम चले गए। तो कुछ समय के बाद राम अंदर गए जंगल में अंदर, फिर एक आवाज सुनाई दे रहा है, आप सबको सबको मालूम है कोई नहीं बात, तो आवाज वो तो पूरा एक षड्यंत्र था मरीच का, हिरण के रूप में आया था रावण के लिए, तो वहां से चिल्लाने लगा लक्ष्मण लक्ष्मण। तो सीता ने सुना और वो भी राम की आवाज से आ रहा है, तो सीता ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण क्या कर रहे हो तुम, राम कुछ समस्या में है तुम्हें जाना चाहिए। लक्ष्मण कहता है मेरे भाई राम को कुछ नहीं हो सकता है, मैं यहां से नहीं जाऊंगा, मेरे भाई ने कहा मैं यहीं रुकूंगा नहीं जाऊंगा। तो सीता बोले नहीं तुम्हें जाना चाहिए, उनको तुम्हारी मदद की जरूरत है। बोलते मेरे भाई को मेरी मदद की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही सबके लिए बराबर, सब कर सकते। तो बार बार कहने के बाद लक्ष्मण ने जब कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा, तो सीता ने लक्ष्मण के चारित्र्य के ऊपर शक किया। सीता ने कहा अभी मुझे समझ में आया तो तुम हमारे साथ क्यों आए हो बाप। तो लक्ष्मण बोला क्यों, और लक्ष्मण तो कभी सीता का मुख भी नहीं देखता था, खाली पैर देख के चलता था। हाँ पूरा दिन रात, पूरा रात, दिन में तो उनके लिए रास्ते बनाता था, रात को कुटीर बनाता था, वो लोग सो जाते तो पूरा दिन रात को पहरेदार बोल के खड़ा रहता था, सोता ही नहीं था। इतना सब किया है लक्ष्मण ने, अभी सीता बोले कैसे लगेगा तुम्हें। हाँ सीता अभी कह रही है, इतना सब सेवा करने के बाद सीता कह रही अभी मुझे पता चला कि तुम्हारे दिल में कुछ कपट है, तुम इसी का इंतजार कर रहे थे कि कभी राम का हाँ वध हो जाएगा, उसके बाद मैं तुम्हारी हो जाएगी। ऐसे हालत में क्या करेगी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई हमारे पर एक्यूज कर रहा है। लेकिन लक्ष्मण कुछ समझ में नहीं आया क्या करे, तो ठीक है अभी इमरजेंसी है, तो उसने लक्ष्मण रेखा खींचा और सीता को कहा तुम इस रेखा से बाहर नहीं आओगी, और गए सीधा, और गए जंगल में, गए अंदर अंदर गए तो सामने से राम वापस आ रहे हैं। और राम ने जैसे ही लक्ष्मण को देखा, लक्ष्मण को डांटने लगे राम, तू किस तरह का भाई है तू, तुम्हें मैंने बोला था वहीं पे रुकने को, तू मेरा आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, कैसा है सिचुएशन। हाँ यहां से सीता अपने उसके चरित्र के ऊपर शक कर रही है, और राम यहां पे मेरा आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है, और लक्ष्मण पूरी तरह से राम का आज्ञा का पालन करते आ रहा है। तो कोई भी उस स्थिति में यस प्रभु क्या क्या करना चाहिए था, हाँ भाड़ में जाए तुम्हारा, मेरा तो आने का जरूरत ही नहीं था यहाँ पे। हाँ वनवास तो पिताजी ने तुम्हारे लिए दिया है, भाई में किधर शास्त्र में लिखा नहीं है कि भाई को आना चाहिए, पत्नी को आना चाहिए ठीक है नो पत्नी साथ में, लेकिन भाई को कहीं लिखा है क्या कि बड़ा भाई को कुछ मिला है अपने पिता के लिए भाई को साथ में जाना पड़ता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। सीधा मैं चले जाता हूँ अयोध्या बोल सकता था, लेकिन लक्ष्मण हाँ तुरंत ऐसा नहीं कि वो क्रोधित होकर शांत हो गए थोड़ा, और बस स्मरण किया उन्होंने भाई का प्रेम, सीता का प्रेम, जो कुछ अयोध्या में रहते हुए उन्होंने अनुभव किया था। हाँ थोड़ा क्रोध को थोड़ा पॉज करके शांत होकर, हाँ ये शांत होना थोड़ा समय लेना, हाँ बताते हैं ना क्रोध को कैसे नियंत्रण में करने के लिए बहुत सारे मैनेजमेंट होते हैं ना, कोई बोलते 10 गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो सकता है, यहाँ से वहाँ से थोड़ा भागो उधर इधर, ऐसे वो टेक्निक होते हैं। तो यहाँ पे लक्ष्मण ने थोड़ा शांत हो गए, स्मरण किया, देखो स्मरण करने से कितना फर्क पड़ता है, तो उन्होंने तुरंत स्मरण किया। इसलिए हमारे भक्ति के जीवन में अच्छे भी बुरे हैं दोनों को कभी भूलना नहीं चाहिए, कहीं ऐसे बुरे भी होते हैं उसे भी नहीं भूलना चाहिए, कि ये भी बताता है कि ये भौतिक संसार का गुण है, और अच्छे हैं अच्छे यानी कीर्तन हाँ प्रसाद हाँ यात्रा वो दर्शन कथा सुनना भक्तों का संग इतना अच्छा अनुभव कभी भूलना नहीं चाहिए। और उसी तरह से हाँ बुरे जो हैं वो भी समझना चाहिए कि किस तरह से कोई क्या बोलता है क्या समझ में बिगड़ जाता है, ये संसार का ये गुण है, बहुत ही समझदारी से काम करना चाहिए। तो उन्होंने स्मरण कर लक्ष्मण शांत होकर अपने सेवा में फिर से लग गए। हाँ तो ये प्रभुपाद ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे, इस जगत में हर व्यक्ति किसी ना किसी से ईर्ष्या करता है, यहाँ तक कि धार्मिक जीवन में भी यदि कोई भक्त आध्यात्मिक कार्यों में आगे बढ़ चुका होता है तो अन्य भक्त उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। हाँ हमारे भक्ति रसामृत स्वामी महाराज रूप गोस्वामी के 5 अंगों के बारे में बताते हैं, सब लोग जानते हैं। यस प्रभु क्या है, हाँ भागवत कथा सुनना, भगवान का नाम माला जाप करना, फिर विग्रह की सेवा करना, तीर्थ स्थान जाना, और 5वां वैष्णव संघ करना। तो फिर उन्होंने सवाल किया ये जो 5 अंग है उसमें से सबसे मुश्किल कौन सा है, एस लीला कीर्तन वैष्णव संघ कितना अच्छा है उतना। लेकिन ये भी सच है कि बिना वैष्णव संघ भक्ति कर ही नहीं सकते, बिना वैष्णव संघ भक्ति हो ही नहीं सकता है। भक्ति अगर बढ़ता है तो सिर्फ वैष्णव के संग में, और उसके साथ साथ वैष्णव संग करना ही पांच अंगों में सबसे बड़ा मुश्किल काम। तो यहां प्रभुपाद यही बता रहे हैं कि किस तरह से रहते हुए ये अगर श्रवण करते रहेगे, अंत में वही बताते हैं ना लास्ट को, जो भक्त निरंतर श्रवण कीर्तन में लगा रहता है वो निश्चित रूप से ईर्ष्या रोग से मुक्त हो जाता है और इस तरह भगवत धाम जाने का पात्र बन जाता है। सो सबका मूल कारण है ईर्ष्या। हाँ, क्योंकि हमने ईर्ष्या किया है, इससे हम भगवान से अलग हो गए। हम चाहते थे कि भगवान क्यों मैं खुद करना चाहता हूँ। तो तुरंत भगवान ने ऐसा एक आवरण डाल दिया कि हम भगवान को भूल गए। कौन है भगवान? देख सकते हैं हमें, लेकिन हम नहीं देख सकते। वन वे विजन, भगवान को दिख रहा है सब लेकिन हम नहीं दिख रहा है। तो इस आवरण को अगर छेद करना है, इस बार दीक्षा के हर दीक्षा में हर दिन एक लेक्चर होता था, तो उसमें एक लेक्चर में बताया गया कि ये जो भोग करने की जो प्रवृत्ति है वो इतना बड़ा एक थिक कि उसको छेद कर जाना इतना आसान नहीं। तो सेवा भाव आता है, ये बहुत ही बड़ा एक वरदान है अगर सेवा भाव जाग रहा है। क्योंकि सेवा भाव जागना है नहीं, पूरी तरह से आवरण को छेद रहा है वो, नहीं तो आवरण ना। तो और आजकल के इसमें अगर हम कहके की बात कर रहे हैं तो भगवान को भूलने के लिए कितने ऐसे सारे विषय हमको सुनने के लिए। हाँ, कहके ही नो, बस थोड़ा सा एक निमित्त मात्र उसने बताया, तुम्हें मालूम है। हाँ, और पूरी तरह से चारों तरफ से जो कुछ, तो इस तरह से समाज में जब कथा नहीं सुनने को मिलता है तो ये स्वाभाविक है कि लोगों की चेतना में सिर्फ मैं ही किस तरह से बोलता हूँ। और आज के खास करके आज के दिन, अभी आप लोगों को मालूम है क्या आने वाला है आगे, और इसमें झूठ का इतना सारा इंटेंसली हो रहा है। आप समझे ना क्या बोल रहा हूँ मैं? इलेक्शन के पहले झूठ लेफ्ट राइट में झूठ कितना होता है, उसमें कौन क्या सुनता है, ठक करते हैं। लेकिन उसमें एक भी है कि अगर कोई सरकार चाहती है कि राम राज्य होना चाहिए, ये तो हम बार बार सुनते हैं ना, राम राज्य होना चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या है? समाज में लोग सब लोग एकदम प्रसन्न संतुष्ट, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई क्राइम नहीं, कोई करप्शन नहीं, सब एक दूसरे से प्रेम, ये राम राज्य है। लेकिन राम राज्य राम के भक्ति के बिना कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है? राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, राम नहीं है तो राम राज्य कैसे होगा? तो ये प्रभुपाद की असीम कृपा है हम सब पर कि उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ पूरा त्याग, इतने सारे संकटों का सामना कर आज के दिन हम यहाँ बैठे हैं। ये सिर्फ प्रभुपाद की कृपा है कि हमें कुछ रामायण के बारे में कुछ समझ में आया, भागवतम के बारे में समझ में आया कि क्या होता है, भगवान का भक्ति करना कितना जरूरी है, किस तरह से हम आज के दिन रामनवमी के दिन इसे समझे कि भगवान का भक्ति करना ये हमारा जीवन का एक पूरा मूल इंटीग्रल पार्ट। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। तो सेवा अलग अलग तरह के होते हैं। अभी जो सेवा है मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये भी एक सेवा है। विग्रह की सेवा होता है और भक्तों की सेवा होता है। सो इस तरह से सेवा के माध्यम से हम इस कलेर दोष, कलेर कलयुग का जो दोष है, कलयुग में इतना दोष है, दोषों का सागर है, कलेर दोष निदे राजन अस्तिर एक महान गुना, कीर्तनद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो इस तरह से हम कथा को यहाँ पे विश्राम देंगे और ये बताएंगे कि राम के बारे में जो कुछ गलत फहमियाँ हैं वो वैसा नहीं है कि राम ने सीता को बहिष्कार किया है, ये कुछ स्वार्थ के लिए नहीं है, निस्वार्थ एक उदाहरण। उनका तो प्रेम तो सीता के साथ कभी हो तो शाश्वत प्रेम है। और यही नहीं कि अगर कोई हमारे समाज के महिलाएं अगर इस तरह, जैसे मेरे साथ ऐसे हुआ था, किसी ने ऐसे दोष दिया कि वो कोई साधारण मनुष्य के समान की ऐसे कैसे कर सकता है, तो राम ने ऐसे अनेक उदाहरण से ये भी किया है कि जब भी तारा, जब वाली का वध हुआ तो तारा के लिए उन्होंने ही केम टू गिव हर दैट शी शुड बी प्रोटेक्टेड। शबरी के बारे में है कि शबरी की कौन से नो वर्ण में क्या थी, उन्होंने उनका झूठा उन्होंने स्वीकार किया है। ऐसे ही कितने ऐसे सारे उदाहरण हैं। भगवान कृष्ण के बारे में भी है, अगर कोई कृष्ण के बारे में इस तरह सोचता है तो कृष्ण बोमासुर ने रानियों को रखा था, तो बोमासुर के वध के बाद सब रानियां, अब हमारा क्या होगा, हम तो आपके दासी बनना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको दासी का स्थान क्या दिया, उन्होंने उनको रानी का स्थान दिया। तो एक तरह से देखें तो भगवान ऐसे नहीं है कि रक्षा करते हैं, उन्होंने उतना ऊंचा स्थान दिया। तो उसी तरह से राम भी उस तरह के भगवान हैं जो हर एक की सिर्फ अच्छा ही चाहते हैं। भगवान सिर्फ हमारी अच्छा चाहते हैं, इसलिए लीलाओं को राधा गोपीनाथ प्रभु ने कहा कि ऐसे जगह से सुनना चाहिए जहाँ पे हमारे हृदय में कुछ अनर्थ नहीं जागना चाहिए, सिर्फ प्रेम जागना चाहिए। नहीं तो फिर सर्प को दूध दिया जाता है तो जहर बनता है। उसी तरह से भागवतम भी अगर हम ऐसे अपनी मर्जी से कहीं भी सुनेंगे, अरे ये भी भागवत कथा है, ये भी सही है, वो उधर सप्ताह हो रहा है, इधर सप्ताह हो रहा है, लेकिन जो वक्ता अगर उसको सही जगह से उसने सुना नहीं है, तो हम उसको अगर बहुत ही हृदय पूर्वक सुन रहे हैं तो हमारे हृदय में अच्छे गुण आने के बदले में कुछ अनर्थ जाग सकते हैं। तो इस तरह राधा गोपीनाथ प्रभु ने शुरुआत की आज भागवत कथा के बारे में। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय ध्यान पूर्वक बैठकर सुने। और ये भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर कुछ अच्छा लगा है उस विषय को जो सुना है वो दोहराया है, अगर उसमें से कुछ गलत है तो उसे निकाल देना चाहिए, कुछ कन्फ्यूजन था कुछ। तो इस तरह आज के दिन हम प्रार्थना कर सकते हैं भगवान रामचंद्र से कि किस तरह हमारे हृदय, तो हम खुद जानते हैं है ना, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हमारे हृदय में किस तरह का रोग के लक्षण कौन से ज़्यादा होते हैं कौन से कम होते हैं। तो प्रार्थना कर सकते हैं कि आप उनकी असीम कृपा हम पर सब पर रहे और आज के सम उत्साह से हम आज के उत्सव में भाग लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, राम नवमी महामोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदी। हरे कृष्ण प्रभु।